नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून जिले में ग्रामीण महिलाओं की हस्तनिर्मित राखियों की बढ़ी मांग, नारी सशक्तिकरण और स्थानीय स्वरोजगार को मिल रही मजबूती। और देहरादून मसूरी मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, धारचुला तवा घाट मार्ग पर यातायात सुचारू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला। और अब समाचार विस्तार से। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
बैठक में सीमा पार से होने वाले अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेष रूप से एकीकृत जांच चौकियों, सड़कों और रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने तथा इनके प्रभावी उपयोग पर विचार विमर्श किया। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और सीमा स्तंभों के रखरखाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत समन्वय और क्षमता विकास को मजबूत करने के उपायों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े मामलों में नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में निरंतर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक नेपाल में आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रागिनी बिंजोला।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक हुई। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन के लिए गांव में रोजगार के साथ बेहतर आजीविका सुविधाएं और संभावनाएं विकसित करना जरूरी है। उन्होंने बैठक में मिले सुझावों के आधार पर प्रभावी कार्य योजना तैयार करने और विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार और आजीविका योजनाओं की जानकारी गांव स्तर तक सरलता से पहुंचाई जाए और लाभ लेने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए। उन्होंने स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को रोजगार से जोड़ने तथा स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 11,90,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 2003 की मतदाता सूची से संबंधित विसंगतियों के चलते 5,47,617 लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 3,95,000 से अधिक की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि दावे आपत्तियों के निस्तारण में सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से BLA के माध्यम से मतदाताओं को सुनवाई प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील की। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR प्रक्रिया नियम अनुसार और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। अधिक दावे आपत्तियां प्राप्त होने वाले जिलों में निगरानी के लिए 9 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आयुक्तों को मतदाता सूची के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी जिलों को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही देहरादून जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की हस्तनिर्मित राखियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से रायपुर, सहसपुर और डोईवाला विकास खंडों की महिलाएं राखी को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। रायपुर विकास खंड के मालदेवता क्षेत्र की सास बहू लीला रावत और अलका रावत ने इस वर्ष 2000 से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें करीब 1500 राखियां तैयार हो चुकी हैं। पिछले वर्ष उन्होंने 1200 राखियां बेचकर करीब 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। इस बार उन्हें स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी ऑर्डर मिल रहे हैं।
मैं 2016 से इस समूह से जुड़ी हूँ NRLM से, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, NRLM की तरफ से। महिलाओं के लिए रोजगार के अन्य अन्य साधन आते हैं, नई नई स्कीमें आती रहती हैं, और हम हर सारी महिलाएं जो है इससे काफी लाभ उठाती हैं, और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फायदा मिल रहा है और हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इसलिए मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
मैंने ये अपना हैंडमेड राखिया का स्टार्ट किया था, हैंडमेड राखिया बनाते हैं, तो इसलिए हम हैंडमेड राखियों से मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ था पिछले साल, इसलिए मैंने इस बार 2 गुना राखिया बनाई है। पिछले बार जितना बनाया था उसका 2 गुना राखिया इस बार बनाई है, तो धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं धामी सरकार का जिन्होंने हमें इस काबिल समझा।
वहीं सहसपुर और डोईवाला की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 100 महिलाएं भी विभिन्न डिजाइनों की राखियां तैयार कर बाजार में बेच रही हैं। सहायक परियोजना निदेशक अनीता पवार ने बताया कि महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए 24 से 27 अगस्त तक उत्तराखंड सचिवालय में 5 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा देहरादून के प्रमुख मॉल में भी राखियों के स्टॉल लगाए जाने की तैयारी है।
हमारे SHG और हमारे क्लस्टर की महिलाओं द्वारा उच्च गुणवत्ता की राखी बनाई जा रही है, और इसमें सशक्त बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनके क्रम में उत्तराखंड सचिवालय में भी 24 से 27 अगस्त तक हमें 5 स्टॉल आवंटित किए गए हैं, जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उच्च गुणवत्ता की राखियों के साथ साथ अपने स्थानीय उत्पादों का भी विपणन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और हमें उम्मीद है कि पिछले सालों की भांति इस साल भी महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
देहरादून मसूरी मार्ग पर बारिश के कारण पानीवाला बैंड के पास सड़क की पूर्व निर्मित सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दी गई है। संबंधित विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम किया जा रहा है। प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यात्रियों से अत्यधिक बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और यात्रा से पहले मार्ग और मौसम की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। उधर पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त कुलागाड़ पुल के स्थान पर वैकल्पिक पुल तैयार कर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। गौरतलब है कि 19 अगस्त को बोल्डर गिरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। हरिद्वार के सिडकुल में भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य उद्योग जगत को पैकेजिंग और कॉस्मेटिक से संबंधित भारतीय मानकों की जानकारी देना और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। BIS देहरादून के निदेशक व प्रमुख हेमंत बी अडे ने कहा कि भारतीय मानक गुणवत्ता सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने उद्योगों से BIS मानकों को अपनाकर उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की अपील की। इस अवसर पर BIS की संयुक्त निदेशक नीलम सिंह ने मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन प्रणाली की जानकारी दी। कार्यक्रम में सिडकुल क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून जिले में ग्रामीण महिलाओं की हस्तनिर्मित राखियों की बढ़ी मांग, नारी सशक्तिकरण और स्थानीय स्वरोजगार को मिल रही मजबूती, और देहरादून मसूरी मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, धारचूला तवाघाट मार्ग पर यातायात सुचारू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।